नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं। मेरे मित्रों, इन दिनों में हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम बहुत ही खास बातों को सीख रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि व्यवस्था को नियत करने वाली लड़ाई, हमने यह भी देखा कि युद्ध में कौन कौन लोग जा सकते हैं और कौन इसमें नहीं जा सकते हैं, और इसके हमें चार कारण भी दिए गए। और इसके पश्चात हमने अध्याय 21 में देखा हत्या, विवाह व हठी पुत्रों के विषय में व्यवस्थाएं, और हमने यह भी देखा कि हत्या से जुड़ी जांच पड़ताल। और आज हम अपने अध्ययन को उससे आगे बढ़ाएंगे और अध्याय 21 के 22 पद से आरंभ करेंगे। लेकिन इसके पूर्व कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो गांव देहातों और दूर दराज इलाकों में रहते हैं और आज इस घड़ी आपके जीवित वचन को सुनने के लिए अपने रेडियो को खोल करके बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है जब हम आपके वचन को एक साथ अध्ययन करते हैं, वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे ताकि हम आपके वचन को समझ सकें और अपने जीवन में उसे उतार सकें, और होने दे कि हमारा जीवन आशीषमय बनने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंता और परेशानियों में हैं, जो बीमारी हालात में हैं, किसी न किसी रूप से हताश हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे किए जाएं, अपने नौकरियों को प्राप्त करें, अच्छे जीवन साथी को पाएं, अपने अध्ययन में अच्छी सफलता को प्राप्त करें और आपको धन्य कह सकें। आज की इस घड़ी हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम एक विशेष और अजीब सी बातों को देखने जा रहे हैं। अब हमारे पास एक अजीब सा मामला है जिसमें एक व्यक्ति को पेड़ पर फांसी लगा दिया जाता है। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 22 और 23 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तो उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। मेरे मित्रों, एक अपराधी जिसे दंड के रूप में पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाता है, उसे पूरी रात पेड़ पर नहीं रखा जा सकता। यह इसलिए कि हर एक जन जो पेड़ पर लटकाया जाता है वह शापित होता है। यह हमारे लिए एक अचंभे की बात है कि यह नियम इस जगह पर प्रकट हो रहा है। सबसे बड़ा दंड जो इसराइल के अंदर किसी को दिया जाता था वह किसी को भी पत्थरवाह करना था, बल्कि किसी को पेड़ पर लटकाने का सर्वोच्च दंड नहीं माना जाता था। अतः इसका असली मतलब है कि जिस व्यक्ति को पत्थरवाह करके मृत्यु के घाट उतार जाता था वह बाद में पेड़ पर लटका दिया जाता था। यह नियम उस अपराधी के लिए प्रयोग किया जाता था जिसने कोई भीषण पाप किया हो, और उसे दिखाने के लिए पेड़ पर लटका दिया जाता था कि वह सबको दिखाई दे कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। यह दूसरों के लिए एक चेतावनी भी होती थी। उस शव को सांझ होते होते पेड़ से उतार कर दफना दिया जाता था। इसका कारण यह था कि वह अपराधी परमेश्वर की ओर से श्रापित है। मेरे मित्रों, शायद मूसा और निश्चित रूप में इसराइल की संतानें इस नियम के सही अर्थ को नहीं समझ पाए। हम गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में पाते हैं, जहां पर पौलुस इस नियम को लेकर मसीह पर लागू करता है। कहता है, मसीह ने खुद हमारे लिए श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्रापों से आजाद कर दिया है, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटका है वह श्रापित है। जिस समय हमारा प्रभु इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तो उन्हें रोमियो के हाथों में दंड भोगने के लिए सौंप दिया गया था, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य का अधिकार था और मृत्यु दंड केवल रोमियो के द्वारा ही दिया जा सकता था। हमारा परमेश्वर एक रोमन क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे काफी समय तक पेड़ की उपमा दी जाती थी। पौलुस जब इस बात को उठाता है और कहता है कि जब मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था और वह हमारे पापों को अपने ऊपर उठा रहा था, और उस परिस्थिति में वह परमेश्वर के द्वारा श्रापित था, उसने हमें पापों के श्राप से छुड़ा लिया, उसने हमें हमारे पापों के दंड से छुड़ा लिया है, और उसने हमारे क्षमा को खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए एक श्राप बना। मेरे मित्रों, मैं उन लोगों के साथ तर्क सुन सुनकर थक जाता हूं जो आपस में तर्क करते रहते हैं कि रोमियो या यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, या मसीह की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, यहूदी या रोमी। मेरे मित्रों, वास्तव में आप और मैं उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हैं। मसीह हमारे लिए श्रापित ठहरा, यही काम उसने हमारे लिए क्रूस पर किया, और हमें उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से जारी रखेंगे, और इसमें हम कुछ विशेष विषयों पर विचार करेंगे। भाइयों के साथ रिश्ते, परिधानों, मकान बनाने, बीज बोने और विवाह संबंधित विविध व्यवस्थाएं। मित्रों, यह अध्याय हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक के एक और खंड की ओर ले आता है। हमने अध्याय 5 से 7 तक 10 आज्ञाओं को दोहराया और उन आज्ञाओं का अनुवाद देखा है। फिर उसके पश्चात 8 से 21 तक धार्मिक व देश से जुड़े हुए कई नियमों को देखा, और अब हम राष्ट्रीय और व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित नियमों को अध्याय 22 से 26 में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने इनमें से बहुत से नियमों को देशों को दिया था, और अब हम ठीक उस स्थान पर जाते हैं जहां पर इन नियमों के आधार पर अपने राष्ट्रीय और पारिवारिक संबंधों को निभाना है। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, तू अपने भाई के गाय बैल व भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो व तू उसे न जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। मेरे मित्रों, हमारे दिनों में हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे संबंधों को बनाए रखने के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। उन दिनों में परमेश्वर के पास पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए रखने हेतु बहुत सुंदर योजनाएं थी। मैं याद करता हूं कि बहुत से शहरों में जब कोई किसी किराएदार को रखता है, तो सबसे पहले वह उसके बारे में जांच पड़ताल करता है, क्योंकि वह एक अच्छे पड़ोसी को अपने पास रखना चाहता है, ताकि उसके साथ अच्छे संबंध को बनाकर रख सके। मेरे मित्रों, लोगों ने रूसवेल्ट को मसीहा के समान आदर दिया और सोचा कि वह सच में एक बहुत ही सुंदर योजना के साथ सामने आया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यह योजना पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की योजना असल में मूसा के जमाने से थी, बल्कि मूसा से भी पहले से थी। इस संबंध में वास्तव में अनंतता के परमेश्वर के सिंहासन से जुड़ा हुआ है। वही है जो कहता है कि पड़ोसियों की अच्छी योजना को अपनाना और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना। इसलिए प्रभु यीशु ने भी कहा कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। आइए हम व्यवस्था विवरण 22 उसके 4 पद को पढ़ें। लिखा है, तू अपने भाई के गधे व बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। उन्हें अपने पड़ोसियों के प्रति रूखेपन को स्वभाव नहीं रखना चाहिए था। यदि उनका पड़ोसी परेशानी में होता था तो वे यह कहके नजरअंदाज नहीं कर सकते थे या बहाना नहीं बना सकते थे कि उससे मुझे क्या काम। उन्हें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी थी। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखते हैं परिधान। आइए हम 22 अध्याय के 5 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। मेरे मित्रों, कोई शायद इस प्रकार से कहे कि यह नियम हम पर नहीं चलते हैं, अर्थात लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। यह सत्य है। फिर भी जितने व्यवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वे हमारे लिए कुछ सिद्धांतों को छोड़ते हैं जिन पर हमारा ध्यान अवश्य ही जाता है। हो सकता है कि मैं समय से बाहर बात कर रहा हूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यह आज भी सत्य है कि स्त्रियां स्त्रियों के पहरावे को ही पहनकर अधिक सुंदर लगती हैं और पुरुष पुरुषों के परिधान को ही पहनकर अच्छे लगते हैं। एक बार जब मैं और मेरी पत्नी बस यात्रा कर रहे थे तो हम लोग एक गाड़ी के पीछे चल रहे थे और मैं ध्यान दे रहा था कि स्त्री गाड़ी चला रही थी और उसका आदमी उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और वह बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी। जब वे पहाड़ी की चोटी पर जा रहे थे तो वे अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पाए और मैं उनके पास से होकर गुजरा। क्या आप जानते हैं कि मैं गलत था? वह आदमी गाड़ी चला रहा था और उसकी पत्नी उसके पास में बैठी हुई थी। वह औरत आदमी के समान दिख रही थी, वह आदमी औरत के समान। सच कहूं तो मुझे उसका कोई भी फायदा नजर नहीं आता। परमेश्वर ने हमें आदमी और औरत के रूप में बनाया है। परमेश्वर यहाँ पर यह कह रहा है कि आदमी को आदमी की तरह और औरत को औरत की तरह ही दिखना चाहिए। आज के दिन में यह बहुत बड़ी परेशानी बनती चली जा रही है, क्योंकि आज सारे लिंग एक ही समान दिखते चले जा रहे हैं और एक ही समान काम करने की कोशिश करते हैं। मैं व्यक्तिगत रीति से महसूस करता हूं कि स्त्रियों को अपने अधिकार की मांग करने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पुरुष स्त्रियों को स्त्रियों के स्थान देना चाहते हैं, अर्थात वे उन्हें उठाना चाहते हैं और उन्हें समान अधिकार से कहीं अधिक देना चाहते हैं। मेरे मित्रों, आज बहुत से परिवार में बहुत से जवान बच्चे अपने मार्गों को खोते जा रहे हैं। क्या यह सच है? क्या यह सही है? आपको और मुझे इस पर विचार करना है। आइए आगे बढ़कर देखते हैं चिड़ियों के लिए सुरक्षा। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, यदि वृक्ष व भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हों चाहे अंडे, और उन बच्चों व अंडों पर उनकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को न लेना। बच्चों को अपने लिए तो ले ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। मेरे मित्रों, यह एक बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर चिड़ियों के लिए भी चिंता करता है। याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक गौराया भी पिता की इच्छा के बगैर नहीं गिरती। इसे हम मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसके 29 पद में पाते हैं। वास्तव में इस वाक्य का अर्थ है कि एक गौराया हमेशा पिता की ही गोद में गिरती है। मात्र एक चिड़िया, लेकिन पिता उसके लिए भी चिंता करता है। यीशु ने कहा, चिंता न करो, मत डरो, क्योंकि तुम गौरवों से कहीं अधिक मूल्य रखते हो। मत्तीरचे सुसमाचार 10 अध्याय उसके 21 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, यह कितना सुंदर वाक्य है। यदि पिता परमेश्वर गौरवों की चिंता करता है तो वह आप सबकी भी चिंता अवश्य करता है। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर आपकी भी चिंता करता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें मकानों अर्थात इमारतों को बनाने के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। मेरे मित्रों, किसी भी व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि इसराइल के उस समय में भी घर की छत के आगे का हिस्सा या डेवड़ी या आंगन या बैठक, चाहे आप उसे कोई भी नाम दें, के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उसको घेरा जाता था। यह वह स्थान था जहां पर परिवार के लोग शाम को ठंडे में एक साथ बैठा करते थे। अब परमेश्वर उनसे कहता है कि वह स्थान सुरक्षित होना बहुत ही जरूरी है। उसके चारों ओर रेलिंग होना अर्थात घेरा बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे वहां से नीचे न गिरे और न ही कोई अंधेरे के समय में वहां से लांघकर चोटिल हो जाए। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में यह सिलसिला शुरू हुआ है जिसके अंतर्गत लोगों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। परमेश्वर समय से पीछे नहीं है जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि वह है। लोग जिस तरह से अपने घरों को बनाते हैं उसकी परमेश्वर चिंता करता है। परमेश्वर उसमें रुचि लेता है। वह चाहता है कि आपका घर उसके लिए समर्पित हो और वह चाहता है कि घर एक सुरक्षित स्थान हो। क्या आपके घर के चारों ओर रेलिंग या दीवार हैं? क्या आप अपने बच्चों को इस संसार की बातों से बचाते हैं? बहुत से लोग अपने बच्चों को बाहर जाने देते हैं और यहां तक नहीं जानते कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। बहुत से बच्चे सड़कों पर रहने चले गए हैं और आधुनिक घरों में जिस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए उस प्रकार की सुरक्षा आज हम नहीं देख पाते हैं। मेरे मित्रों, घर परिवार का एक साथ होना बहुत आशीषमय होता है। यदि आपके बच्चे गलत मार्गों पर चले जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी दीवार घर के छत पर या बाहर नहीं है, और यही कारण है कि बच्चे बुराइयों में फंसते चले जाते हैं और वे विनाश के कारण बनते हैं। यह जिम्मेदारी आपकी है कि बच्चों को आप सही रास्ता दें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें मिश्रण। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अपने दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बीजों में कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। मित्रों, यहाँ पर जो बात परमेश्वर कह रहे हैं वह मुझे एक चुटकुले के जैसा प्रतीत होता है। असल में मैं इसे इसराइल में होते हुए देखता हूँ, बल्कि मेरे पास में एक चलचित्र है जिसमें दर्शाया गया है कि एक अरब निवासी गधे और बैल को एक साथ जुए में लगाकर खेत को जोत रहे हैं। अतः इस तरह से वे आज भी काम करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि इसराइल को कभी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है? मेरे मित्रों, देखिए कि एक गधा गधा है और एक बैल बैल है, और वे कभी समानता में नहीं चल सकते। उनके चलने का तरीका अलग है और वे कभी एक साथ नहीं बढ़ सकते। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि परमेश्वर को मिश्रण बिल्कुल भी पसंद नहीं है? यही बात विवाह में भी लागू होती है। परमेश्वर विश्वासी और अविश्वासी के मिश्रण को नहीं चाहता है। दुर्भाग्य से बहुत से विवाह मुझे इन गधों और बैलों को एक साथ जोतने की बात की याद दिला देते हैं। एक मसीही लड़की किसी अविश्वासी लड़के के साथ में कैसे शादी कर सकती है? या कैसे शादी कर लेती है। बहुत ही अचंभा की बात है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसा हो। हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण के साथ में क्या होता है? जब आप उसे धोते हैं तो ऊन तो सिकुड़ जाता है परंतु लिलोन नहीं सिकुड़ता। तब आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 22 उसके 12 पद में, अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। अब वह झालर अधिकतर नीले रंग की हुआ करती थी और हम लोग जानते हैं कि महायाजक के पोशाक की झालर भी नीले रंग की थी। झालर उनके परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाती है। बाद में झालर यहूदियों के लिए एक निशानी भी बन गई। मेरे मित्रों, परमेश्वर मिश्रण के खिलाफ चेतावनी देते हैं। परमेश्वर की संतानें संसार के साथ मिश्रित नहीं हो सकती हैं। मैं बहुत से मसीहियों को यह कहते हुए सुनता हूं कि वे संसार की रीति के अनुसार इसलिए चलते हैं कि वे संसार के लोगों को मसीह के लिए जीत लें। मैं आपको एक खबर या संदेश देना चाहता हूं, उन तक पहुंचने का यह रास्ता नहीं है। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना हो जिसने प्रभु को इसलिए स्वीकार किया हो क्योंकि आप संसार के अनुसार चलने लगे थे, तो मुझे भी आप अवश्य ही बताएं। मित्रों, बीज मिलाने के लिए नहीं है, बैलों और गधों को एक साथ मिलाने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप गलतियां ही करेंगे। ऊन और लेलोन को मिलाने के लिए नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से मसीही लोग संसार में मिश्रित होने के लिए नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, हमें बचा लिया है और आज हम परमेश्वर के हैं, ताकि हम एक गवाहीपूर्ण जीवन संसार के लिए जिए और आत्माओं को प्रभु के लिए जीत सकें। हम आगे देखेंगे विवाह व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय उसके 13 से 15 पद में हम पढ़ते हैं, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याहे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए कि इस स्त्री को मैंने ब्याहा और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं। मेरे प्रियो, यह नियम एक निर्दोष पत्नी को बचाने के लिए था और यह उस पत्नी को झूठे आरोपों से बचाने के लिए था। यह उस पत्नी को ईश्वर रहित और नफरत करने वाले पति से बचाता है। यह ऐसा रास्ता था जिसका इस्तेमाल या प्रयोग शायद आज हम नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर ने इस प्रकार की परिस्थितियों में पत्नी को बचाने के लिए इंतजाम किया। हम व्यवस्था विवरण 20 उसके 20 और 21 पद को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाएं और उस नगर के पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डालें। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है, यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। मेरे मित्रों, यह बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन अगर वह स्त्री दोषी निकले तो उस पर पत्थरवाह किया जाना चाहिए था। आज लोग नई नैतिकता के बारे में बात करते हैं और विवाह से बाहर यौन संबंधों को एक मजबूत कदम के रूप में देखते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों अर्थात इसराइल को नैतिकता का एक स्तर दिया था। परमेश्वर के द्वारा दी गई नैतिकता किसी भी देश के लिए एक आशीष का कारण ठहर सकती है। किसी भी देश ने नैतिकता के इस स्तर को तोड़ा और उसका पतन भी हो गया। जब भी मैं इन नियमों के बारे में और अपने देश की स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ा जाता था तो उसे पत्थरवाह के द्वारा मार दिया जाता था, चाहे वह पुरुष हो या वह स्त्री ही क्यों ना हो। यदि हम ऐसा अपने देश के शहरों में करें तो यहाँ पर मृतकों के इतने ढेर लग जाएंगे कि यहाँ पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर विवाह और यौन संबंधों की पवित्रता का आदर करता है। वे विचार को इसराइल में पत्थरवाह के द्वारा दंडित किया जाना था। मित्रों, यह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर व्यभिचार के विषय में कैसा महसूस करता है। याद रखें कि परमेश्वर का प्रेम उसकी व्यवस्थाओं में प्रकट होता है। विवाह की शुद्धता और सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था उसके प्रेम और मानवीय परिवारों के प्रति उसके ख्याल का स्पष्ट उदाहरण है। आज मुझे और आपको इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। आज बहुत से हमारे मसीही भाई बहन इस प्रकार के गलत एवं संबंधों और विवाह की समस्याओं में उलझे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बाहर निकले, क्योंकि इसराइलियों से कहा गया था यदि वे व्यभिचार में पकड़े गए तो उन्हें पत्थरवाह करके दंडित किया जाए, अर्थात मार दिया जाए। मेरे मित्र, आज आप कहां पर हैं? यदि आपका जीवन भी इसी प्रकार की गंदगी पूर्ण जीवन है तो आज प्रभु के पास आए, अपने पापों को प्रभु के सामने रखें और उससे क्षमा मांगे, क्योंकि उसने आपके पापों को लेकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि आप जीवन पाएं, आप बच जाएं, आपके पाप क्षमा हो जाएं। यही मौका आपके पास में है। अगर आज आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आपको दोबारा मौका न मिले। मेरे मित्र, यहां पर परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वचन पर अवश्य ही विचार करें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। You know.